تفاهم. الحمد لله متفاهم، سلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، إيش لي جن مجالس إصلاح نفس کا ایک نسخہ جو تمام مشائق کے یہاں کسی نہ کسی درجے میں رائج ہے، وہ بیان کیا جا رہا ہے کہ مشائق کے نزدیک چار چیزوں کی قلت سے اصلاح نفس حاصل ہوتی ہے، اور وہ چار چیزیں ہیں: قلت طعام، کھانے پینے میں کمی کرنے سے، قلت کلام، گفتگو میں کمی کرنے سے، قلت منام، نیند کو کم کرنے سے، اور چوتھی چیز ہے قلت اختلاط مع الانام، لوگوں سے میل جول میں کمی کرنے سے. یہ چار چیزوں کو اگر غور سے دیکھا جائے تو یہ صرف اصلاح حاصل کرنے والے سالکین کے لیے ضروری نہیں، بلکہ قرآن اور حدیث کی روح سے ہر مسلمان کے لیے یہ چاروں چیزیں کرنا ایک اہم چیز ہے. پچھلے 2 دن سے ہم گفتگو کر رہے تھے قلت طعام پہ، کہ کم کھانا جو ہے وہ کس لحاظ سے فائدہ مند ہے، اور کیسے اصلاح کی بنیاد جو ہے وہ کم کھانے پہ ہے، بلکہ جو زیادہ کھاتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ زیادہ کھانے والا اللہ کا دشمن ہے. آج کی اس مجلس میں قلت کلام کے بارے میں گفتگو ہوگی کہ الفاظ کا کم بولنا، زبان کا کم استعمال کرنا، یہ بھی اصلاح کے لیے بہت ضروری چیز ہے. ہمارے وجود سے جو گناہ ہوتے ہیں اس میں سب سے زیادہ گناہ اس زبان ہی سے ہوتے ہیں. اور مشائخ نے فرمایا کہ اس زبان سے گناہ نہ ہو، اس کا پہلا قدم یہی ہے، انسان اس زبان ہی کو تھوڑی دیر کے لیے روک دے. عام انسان زبان سے بولتا رہتا ہے مگر اس کی سوچ ساتھ ساتھ نہیں چلتی کہ یہ زبان بول کیا رہی ہے. اکثر لوگوں کو کوئی اکاؤنٹبلٹی نہیں ہے، کوئی حساب کتاب نہیں کہ زبان سے کیا کیا میں نے پورے دن میں بولا، یاد بھی نہیں رہتا ہے، اتنا زیادہ بول لیتے ہیں. حالانکہ اس بولنے پر ایک ایک لفظ کا جواب دینا ہوگا کہ کون سا لفظ کیوں بولا. مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ، نہیں نکلتا کوئی لفظ تمہاری زبانوں سے مگر یہ کہ ایک نگہبان فرشتہ اسے لکھ رہا ہوتا ہے. تو یہ زبان یوں سمجھ لیں کہ ہمیں کرائے کی چیز دی گئی ہے، جیسے چاہیں ویسے استعمال نہیں کرنا، اس کا حساب کتاب دینا ہوگا. زبان سے ہر ہر نکلا ہوا لفظ بڑا وزن رکھتا ہے. آپ دیکھیں، کوئی شخص 100 سال کا کافر ہے، 100 سال کا مشرک ہے، 100 سال کا گناہگار ہے، اور زبان سے ایک کلمہ نکالتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول، 100 سال کے گناہ معاف، 100 سال کا کفر و شرک معاف ہو جاتا ہے. تو زبان سے نکلا ہوا ہر ہر لفظ بڑا وزن رکھتا ہے. ترمذی شریف کی روایت ہے، کبھی کبھی انسان اپنی زبان سے ایک ایسا لفظ نکال دیتا ہے کہ اللہ کو وہ لفظ اتنا ناپسند آتا ہے، اللہ رب العزت قیامت تک اسے اپنے دشمنوں میں لکھ لیتے ہیں ایک لفظ نکلنے پہ. तो ऐसा नहीं है कि जबान से जो टर टर निकालना चाहे निकाल सकते हैं। जो हमारी गुनाहों की किताब है अल्लाह अकबर, ज्यादा गुनाह जो है जुबान ही इसके है। इसीलिए हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह अन्हु का मशहूर कौल, आप जुबान को पकड़ते थे, फरमाते थे ये वो चीज है जिसकी वजह से ज्यादा लोग जहन्नम में जाएंगे। यही तो जुबान है जो इंसान को मुनाफिक बनाती है। नबी अलैहिस्सलाम फरमाए मुनाफिक की निशानियां तीन, और पहली निशानी क्या बयान की कि जब वो अपनी जुबान से बात करता है तो झूठ बोलता है। तो ऐसे कैसे हो सकता है कि जी जुबान जो भी बोलती जाए और इंसान फिर भी सुलूक के रास्ते तय कर रहा हो। तो गो के हर मुसलमान के लिए तो जरूरी है ही सही अपनी जुबान को कंट्रोल करना, मगर जो राह सुलूक में अल्लाह का कुर्ब हासिल करने की मेहनत कर रहा है, जब तक इस जुबान को काबू में नहीं लेके आएगा कोई चीज भी नहीं आगे बढ़ सकती है। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु के नजदीक इस जुबान की अहमियत इतनी, आपने फरमाया अल मरउ तहता लिसानी ही, इंसान अपनी जुबान के पीछे छुपा हुआ है, या इंसान की पूरी जो पर्सनैलिटी है वो जुबान से पता चलेगी। यानी जैसे इंसान अपनी जुबान खोलेगा उसका पूरा कच्चा छट्टा सामने आ जाएगा। कितना तालीम याफ्ता है, किस कौम से है, किस नस्ल से है, क्या सोच रखता है, क्या सोच नहीं रखता है, थोड़ी देर की गुफ्तगू में ही पता चल जाता है। इसीलिए सैकड़ों हजारों सालों से तालीमी इदारों में तालीम हासिल करनी हो, नौकरी पे जाना हो, सब कहते हैं जी इंटरव्यू होगा, उसकी जुबान से क्या निकलता है ये हमें पता चले। तो इस जुबान को काबू में लेके आना, या कम से कम इस चीज का इदराक होना कि जुबान से निकलता क्या है, ये राहे सुलूक पे चलने वालों के लिए बहुत जरूरी। इसलिए मशायख ने किल्लते कलाम को इस्लाह का एक अहम जुज बनाया, बल्कि बहुत सारे मशायख जो है किल्लते कलाम बाकायदा सिखाते थे, किताबों में लिखा है। शेख उल हदीस हजरत मौलाना जकरिया रहमतुल्लाह अलैह के दस्तरखान पे खामोशी होती थी, किसी को गुफ्तगू करने की इजाजत नहीं होती थी, हजरत का रोब इतना होता था कि खामोशी जरूरी है। हमारे सिलसिला के बुजुर्ग बड़े गुजरे हैं हजरत ख्वाजा बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह अलैह, हजरत मुजद्दिद सानी रहमतुल्लाह अलैह के शेख थे, और आपकी मजालिस के अंदर लोग आते भी थे बैठते भी थे, कई कई घंटे बस हजरत भी खामोश, सालिकीन भी खामोश, हजरत भी दिल में अल्लाह अल्लाह कर रहे होते, सालिकीन को भी यही तरगीब होती कि बस अल्लाह अल्लाह करनी है, इस जुबान को ज्यादा इस्तेमाल ही नहीं करना। एक मरतबा इसी तरह सालिकीन तशरीफ फरमाते और हजरत भी तशरीफ फरमाते, बाहर से एक बंदा आया आगे बैठा देख रहा है कि जी मुरीदीन भी बस खामोश बैठे हुए हैं और हजरत भी खामोश बैठे हुए हैं। तो उसने आके अपने जहन के मुताबिक हजरत से अर्ज की कि हजरत आप कुछ नसीहत फरमाए लोगों को तो लोगों को फायदा हो जाए। हजरत ने फरमाया कि जिसको हमारी खामोशी से फायदा नहीं हुआ उसको हमारे अल्फाज से भी फायदा नहीं, जिसको हमारी खामोशी से फायदा नहीं हुआ उसको अल्फाज से भी फायदा नहीं। मशायख अपने अपने अंदाज में इस खामोशी को सिखाते थे। कुछ अरसा खामोश बंदा रहता है ना तो फिर अपने अल्फाज को खुद सुनना भी शुरू करता है, वरना पूरे दिन में पता नहीं क्या क्या बोल के आ जाते हैं। बल्कि हमारे यहाँ तो रिवाज चल गया है कि दूसरे को ऐसा बोल के आओ कि सीधा हो जाए। तो दूसरा हो सकता है सीधा हो जाए, आपका जो नामा या माल है वो उल्टा हो जाता है। इसलिए इस जुबान का सही इस्तेमाल, इस जुबान को खामोश रखना, ज्यादा नहीं बोलना, ये नेक लोगों की इस्लाह के रास्ते पे चलने वालों की निशानी है। इमाम आजम इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की नसाहे में से एक नसीहत है फुकहा को ये थी, ये गुफ्तगू ज्यादा नहीं करनी है, अपना ज्यादा वक्त याद इलाही में लगाना है। तो गो के खामोश रहने हर मुसलमान ने कुरान हदीस से देखेंगे तो हर मुसलमान के लिए जरूरी है, मगर इस्लाह पे चलने वाले के लिए तो ये सबसे अहम तरीन चीज है। हजार वक्त जुबान से टट्टर ना होती रहे। जब इंसान की जुबान की इस्लाह हो जाती है फिर जुबान से फूल झड़ते हैं, फिर हर लफ्ज दूसरे के दिल में उतरता है, हर बात दूसरे की मोहब्बत को खींचने वाली बात होती है। तो इसलिए दीन की दावत देने वाला, उसके लिए भी जरूरी कि उसकी जुबान उसके काबू में हो, उसकी जुबान के अंदर मिठास हो, उसकी जुबान के अंदर इस्लाह हो। मशायख एक वाक्या बयान करते हैं हमारे मुल्क की एक नेक औरत का, पुराना वाक्य है कि नेक औरत थी, जिंदगी नेकी में इबादत में इस्लाह में गुजार दी। किसी अमीर जमींदार से उसके वालदैन ने उसकी शादी कर दी। जमींदार जो था अमीर भी था मगर आम दुनियादार तबके से था, मगर बीवी क्योंकि बहुत नेक थी तो उसने जहन बनाया। तो शादी के बाद कुछ ना कुछ नेकी वाले मामलात भी कर लेता, मगर काम कारोबार की मसरूफियत बहरहाल गालिब रहती। जमीनें इतनी थी कि जमीनों के अंदर कई मर्तबा बसों के अड्डे होते थे, तो कई मर्तबा बेगम को लेके जाता जमीनें दिखाने के लिए, तो बेगम ने देखा कि बसों के अड्डों पे लोग खड़े हुए हैं, रात को बस नहीं आती है, गांव का इलाका है तो रात को मुसाफिरों को परेशानी होती है। तो उसने तरगीब दी कि अल्लाह ने हमें इतना दिया है, हम अगर एक कमरा बना देंगे ना बस के अड्डों पे, एक कमरा भी बना दिया तो लोगों के लिए रात को छत का इंतजाम हो जाएगा, तो मुसाफिरों की खिदमत करना, उनकी दुआएं जो है वो बरकत का बायस होती है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मुसाफिर की दुआ रद्द नहीं होती। तो शौहर को समझ में आ गया, उसने कहा बहुत अच्छा, एक कमरा बनाना कौन सी बड़ी बात है, कमरा बना दिया। बहुत खुश हो गई कि जी मुसाफिरों का सही इंतजाम हो गया। नेक औरत थी, नेक ख्वाहिशात रखती थी। कुछ अरसे बाद उसको शौक हुआ कि जी जो रात रह जाते हैं पूरी रात जो बसों के इंतजार में होते हैं बस नहीं आती, तो चलो रहने का इंतजाम हो गया, एक तो रात के खाने का इंतजाम भी कर लिया। तो फिर शौहर से कहा कि अल्लाह ने इतना दिया। शौहर ने फिर बात मान ली कि ठीक है, हर रोज रात को यहाँ पे जो भी ठहरेगा उसके लिए खाने का इंतजाम कर देते हैं। अब शौहर क्योंकि आम सा बंदा था, हर तरह के लोगों से मुलाकात होती है, एक उसका दोस्त था जो इन चीजों को इतना ज्यादा कोई समझ नहीं, बरकत से वाकिफ ही नहीं था, उसने दो तीन बातें सुनाई। ये तूने क्या शुरू किया हुआ है पैसे जाया करने का तरीका, पहले इस तरह का घर सा बना दिया ऐसे लोगों के लिए जिनको जानता भी नहीं है, फिर हर रोज ये खर्चा हो रहा है, बेवकूफी बनता जा रहा है। अब ये सारी बातें सुन के घर आके वो जो कमरा बनाया था वो तो खत्म नहीं कर सकता था, मगर खाना पीना उसने खत्म करवा दिया। अब बीवी का इतना शौक था कि जी मुसाफिरों की खूब खिदमत हो, नेकी वाली जिंदगी जो गुजारी थी, यही दिल में होता था कि लोगों की खिदमत हो जाए, अल्लाह राजी हो जाए। मगर जब इसने ये खत्म कर दिया तो बजाय इसके कि शौहर से तकरार करती, खामोश हो गई। दिल में ये बात रह गई कि ये शौक मेरा था कि मुसाफिरों की खिदमत। वक्तन फवक्तन शौहर जो है वो जमीनों पे ले जाता। एक मरतबा जमीन पे लेके गए तो वहां एक कुआं था। शौहर इधर उधर जमीन को देख रहा था, ये कुएं पे आके खड़ी हो गई। बहुत देर तक कुएं पे खड़ी रही, हद तक कि खाविन ने कहा जाने का वक्त है। खाविन गाड़ी की तरफ आगे बढ़ा, देखा बीवी अभी भी कुएं के पास ही खड़ी है। इंतजार करता रहा, फिर भी नहीं आई, तो खुद चल के चले गया कि अल्लाह की बंदी इतनी देर से इस कुएं पे खड़ी क्या देख रही है। तो ये देख रही हूं इतना पानी इस कुएं में है, इतने लोग हमारे सामने आए और आकर पानी लेके चले गए, पानी है कि खत्म ही नहीं हो रहा। उसने कहा अल्लाह की बंदी पानी कैसे खत्म होगा, पानी लोग लेके जितना भी चले जाए नीचे से और आ जाता है। उसने कहा अच्छा, कहा नीचे से अल्लाह ताला और भेज देते हैं, बड़ा पानी है नीचे। ये बात सुनी तो उसने कहा अच्छा, तो ऐसा होता है कि जब कुएं में पानी बहुत होता है तो नीचे से अल्लाह पानी और भेज देते हैं, अगर ऊपर से पानी दे भी दिया जाए किसी को। तो कहा ऐसा ही है, तरतीब यही है। तो कहा इतने सालों से जो काम कर रहा हूं जरात का, यही देखता हूं पानी कभी खत्म कुएं में नहीं होता है। उसने कहा फिर अल्लाह ने हमें भी तो एक माल और दौलत का कुआं दिया है, और उसमें से आप लोगों को कुछ दे देंगे तो आपको क्यों ये डर लग गया कि ये माल खत्म हो जाए। तो क्योंकि जबान से फूल झड़ते थे, इसलाह हुई हुई थी, जबान का सही इस्तेमाल आता था। ये बात उसके दिल को लगी। शौहर ने फिर से उसी दिन से फिर खाने पीने का इंतजाम शुरू कर दिया, पहले से बढ़ा दिया। जब ये किल्लते कलाम नसीब होता है, अपनी आवाज खुद को सुनाई देती है, फिर इंसान की जुबान से अच्छी चीजें निकलती है। अल्लाह ताला हमें ये किल्लते कलाम की नेमत नसीब फरमाए। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह दुआ कर लीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. وصلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. جزاكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة
الله وبركاته.